नमस्कार। आज के मार्गदर्शन कार्यक्रम में मैं अर्चना सिंह आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर व्यवसाय अपने साथ कुछ अलग तरह की चुनौतियाँ, कुछ अलग तरह की समस्याएं लेकर आता है। देश की लाइफलाइन समझा जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन का व्यवसाय भी अपने साथ कई तरह की समस्याएं, कई तरीके की चुनौतियों का सामना करने का मौका देता है। आज हमारे साथ नागपुर शहर के कुछ ट्रांसपोर्टर्स, लोको पायलट्स और उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। वे अपने प्रोफेशन के दौरान जिन समस्याओं का सामना करते हैं, जिस तरह की चुनौतियों से जूझते हैं, उसके बारे में वे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और उनके उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ फिर से हैं बेहद अनुभवी आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी। पुष्पा रानी दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदर्भ क्षेत्र की सब जोन संचालिका है। दीदी जी, शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। पहला सवाल पूछना चाहते हैं महेंद्र लुल्ले जी।
मेरा प्रश्न ऐसा है, मैं वाहतूक व्यवसायी हूँ और जैसा कि कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन ये लाइफलाइन ऑफ द नेशन होती है, समाज की लाइफलाइन होती है, पर इसमें जो व्यवसाय करते हैं या जो लोग काम करते हैं उनको समाज में रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता है, ऐसा क्यों?
व्यक्ति घर से निकलता है, सबसे पहले देखता है मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचूं, एयरपोर्ट तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचूं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही, शहर भी बड़े होते जा रहे, कारोबार भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अगर है तो ट्रांसपोर्ट का है। इतनी इसकी विशेषता है, वैज्ञानिक युग के अंदर हम चाहे नाश्ता यहां करें तो दिन का भोजन जाके लंदन में कर सकते हैं, रात का अमेरिका में कर सकते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये विभाग है। बाकी देखने का नजरिया हर एक का अपना अपना हो सकता है, वह मनुष्य के ऊपर अपने अपने विचारों पर है। कोई इस महत्व को जानता है और कुछ एक ऐसे भी जरूर होते हैं जो ये समझते हैं कि ये कोई खास नहीं है, तो उनकी अपनी अपनी समझ हो गई। तो इसलिए हम अपने दिल को में ये सवाल न रखें कि लोग इस चीज को नहीं समझते। हर एक की कैपेसिटी अपनी अपनी है। तो आज ये समय, कलयुग का वातावरण, कोई किस दिशा की ओर सोचता है, कोई किस दिशा की ओर, इसलिए उतार चढ़ाव कम ज्यादा ये बातें होनी ही हैं। अगर कोई इसको कम समझते हैं तो कई इसको बहुत श्रेष्ठ भी समझते हैं, तो हम उनको देखें, हम इसको क्यों देखें, और बिना मतलब सोच करके अपने मन को हम नर्वस क्यों हो जावे। कई बार जब ऐसा सोचते हैं तो नर्वसनेस आ जाती है। हर एक अपना अपना संस्कार है, उस हिसाब से चल रही है। हमको नर्वस नहीं होना, अपने कार्य को हमको बहुत बहुत आगे बढ़ाना है और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विभाग है।
मुझे लगता है कि रमेश जी को अपना उत्तर मिल गया होगा कि इस व्यवसाय का अपना महत्व है, जो नहीं समझते वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना नजरिया है। जब कभी मौका मिले आप लोगों को समझा सकते हैं इस व्यवसाय के बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में, लेकिन उनके नजरिए को लेके अपने आप को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट होना लाजमी है। अगला सवाल पूछना चाहते हैं रमेश छाबरा जी।
नमस्कार, मैं रमेश छाबरा हूँ, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हूँ। हमारे व्यवसाय में दिन निकलता है तो टेंशन के साथ में, रात होती है तो टेंशन के साथ में, रात को 2 बजे फोन आ जाता है, फलाना काम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, टेंशन। सवेरे ड्राइवर होता है वो गाली गलौज से स्टार्ट होती है, तो समझ में नहीं आता इसका अंत क्या होगा, इसका क्या कुछ सोल्यूशन है इसका?
मनुष्य की बुद्धि में, या पहले ड्राइवर्स की अगर बात एक ले लें, उनकी बुद्धि में आ जाता है कि हमको गाड़ी चलानी है, थक जाएंगे, इसलिए वो पीने की आदत लगा लेते हैं और कुछ उनको संग भी, तो कुछ संग के कारण, और ये जो उसकी मानसिकता बन जाती है, उसके बिना मैं गाड़ी नहीं चला सकूंगा। उसी के रिजल्ट में आप देखते हो जब वो उस ढंग से पी करके चलाता है तो वो एक्सीडेंट भी कई बार कर बैठता है, जिसका प्रभाव मालिक के उसके ऊपर आता है, भाग दौड़ भी उसको बहुत बहुत करनी पड़ती है। इसलिए आवश्यकता है उसको पहले हम व्यसनों से मुक्त करें। वैसे तो लिखा रहता है जहां भी रोड के ऊपर जाओ शराब पी के गाड़ी मत चलाएं, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को मिक्स मत करें, पर वो देखा जाता है अनुभव यह कि केवल लिखत तक रह गया है, मनुष्य के मन में वो चीज नहीं घुसी है। इस विद्यालय के अंदर एक ट्रांसपोर्ट विभाग ने विशेष ड्राइवर्स का प्रोग्राम रखा, उनको लाभ हानि, लाभ तो कुछ भी नहीं, व्यसन माना ही हानि ही है, उस पर समझाया, अपने मन पर कैसे कंट्रोल करो वो समझाया, तो प्रैक्टिकल ये रिजल्ट निकला कि काफी ड्राइवर्स की वो कम हुई। कम होने के कारणों ने जब साल का हिसाब निकाला उस साल के एक्सीडेंट भी कम हुए थे। तो कहने का भाई ये सारा विचारों का खेल है, उनके अंदर तक हम विचारों को नहीं बदलेंगे तो ये समस्या पैदा होती है। जब तक हम इनके विचारों के अंदर आध्यात्मिकता नहीं डालेंगे, मन को उनकी पावर नहीं देंगे ज्ञान और योग की, तब तक वो परिवर्तन नहीं आएगा और ये समस्या दूर नहीं होंगी और ये बढ़ती जा रही है। तो हल है एक आध्यात्मिकता, और काफी जीवन में परिवर्तन हो जाता है, चाहे एक्सीडेंट्स में चाहे मुख के बोल में। वही काम प्यार से भी हो सकता है, वही काम गाली देके भी हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट नहीं सिखाता ऐसा करो, ये मनुष्य के विचार करवाते हैं। कभी कोई ट्रांसपोर्ट के मालिक ने कंडक्टर ड्राइवर को बैठ के सिखाया है क्या कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो? तो हम ट्रांसपोर्ट को क्यों बदनाम करें? वो तो अच्छा कार्य करने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, जहां वीकनेस है उसको जरूर खत्म करने का प्रयास करें।
मतलब समस्या व्यवसाय की नहीं है, समस्या विचारों की है, और जहां तक हो सके आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके विचारों को परिवर्तित करने की कोशिश कर सकें तो शायद आपकी समस्या का निदान हो सकता है, और यदि वहां तक नहीं पहुंच सकते तो स्वयं आध्यात्मिकता का सहारा लेकर अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने क्रोध को कम कर सकते हैं। देखते हैं प्रदीप शाह जी क्या पूछना चाहते हैं।
प्रदीप कुमार शाह, लोको पायलट पैसेंजर हूं। मेरा ये सवाल है, रेलवे में देखा लोको पायलट को, जो ड्राइवर का काम करता उसको लोको पायलट बोला जाता रेलवे में, उसको एक पीरियडिकल ट्रेनिंग दिया जाता सेफ्टी के बारे में, उसका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता, लेकिन रोड में जो व्हीकल्स चलते रहता उसका जो ड्राइवर होता उसका कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको कोई सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। तो इसी कारण से मेरे ख्याल से रोड में जो एक्सीडेंट होता, फ्रीक्वेंट जो एक्सीडेंट होता इसी कारण से होता, तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर उसको तो ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाता?
ट्रेनिंग दिया जाए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अगर आप कुछ योजना बना सकते हैं तो बनाइए मिलकर के, हर एक को ट्रेनिंग दें। पर ट्रेनिंग के साथ साथ तुमने बताया कि उनका मन पर कंट्रोल होना जरूरी है। कई बारी विचार इधर उधर चले जाते हैं, ड्राइविंग सामने कर रहे हैं, मन का विचार दूसरी तरफ गया, तो क्या होगा? कई बारी हम अपने को एक्टिव नहीं बना पाते हैं, कहते एक सेकंड के लिए आंख की झपकी लग गई, उसमें हो गया। ऐसे भी मिसाल सामने आते हैं, तो इसके लिए पहले उनको यह जरूर समझाइए कि अगर किसी कारणवश आपका कुछ सी प्रॉब्लम है, तो आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए एक साइड गाड़ी को लगा दो, पानी पी लो, मन पर भी कंट्रोल करो, खुद को फ्रेश करो, तब चलाओ। ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कई कारणों से होते हैं और थोड़ी उसके अंदर ड्राइविंग की भी कुशलता होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि कई बारी अपन सावधान रहते पर दूसरा व्यक्ति उसका बैलेंस नहीं रहता, पर उसमें से भी मार्ग निकाल सके, अपने आप को सेव कर सके, गाड़ी को सेव कर सके, वो क्विक डिसीजन होना चाहिए। पर क्विक डिसीजन तब ले सकते हैं, होता है 1 सेकंड का ही है, जब हमारा माइंड प्रेजेंट हो। मन प्रेजेंट नहीं है, ऐसी परिस्थिति आ गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके लिए तब का मन पूरा कंट्रोल में, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो उसके हाथ में जैसे गियर भी होता है, वैसे ब्रेक भी उसके हाथ में होती है, कुछ पांव से भी चलाते, कहीं हाथ से भी लगानी पड़ जाती है, तो ऐसे ही गाड़ी के को भी चलाते हैं। अगर गाड़ी चलाना सीख गए, ब्रेक लगाना नहीं सीखे, तो क्या होगा? तो ऐसे अपने मन को भी हम लोग ब्रेक लगाना सीखे तो प्रेजेंट माइंड होंगे, तो उस गाड़ी की भी ट्रेनिंग ठीक चाहिए। शरीर रूपी गाड़ी, मन की गाड़ी को चलाने के लिए भी हमको ट्रेनिंग चाहिए। वो मन की गाड़ी कैसे चलाओ, उसकी ट्रेनिंग विद्यालय देता है। प्रेजेंट माइंड होकर हर कार्य करो।
प्रदीप जी का सजेशन था कि जो सड़कों पे चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का प्रबंध होना चाहिए, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होना चाहिए। दीदी जी ने उसमें एक और सुझाव दिया कि शारीरिक तौर पे तो आप गाड़ी की ड्राइविंग सीख सकते हैं, लेकिन मन की ड्राइविंग के लिए भी एक कोर्स होना चाहिए, और जहां तक हो सकता है जिनके अंडर ये लोग काम करते हैं, मालिक लोग इसका प्रबंध कर सकते हैं कि वो मन के ब्रेक्स को कैसे लगाएं, मन को कैसे कंट्रोल करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रखें, जिससे कि इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। अगला सवाल पूछना चाहते हैं विभूति कश्यप जी।
नमस्कार, ओम शांति। मैं विभूति कश्यप, संचालक आनंदा टूर्स। मैं पर्यटन के व्यवसाय से जुड़ा हूं। पर्यटन के व्यवसाय में जिन प्रकार की एजेंसी से हम काम लेते हैं और जिस प्रकार के वातावरण में हम काम करते हैं, कुछ भी हमारा नहीं होता है। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग एजेंसी से लेकर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, टूर। कभी बाढ़ आ गई, कभी प्लेन की स्ट्राइक हो गई, कभी होटल में स्ट्राइक हो गई, और उस कारण जो ग्राहक, जो मेहमान उस सुविधाओं का लाभ लेने जाता है, वो पूरा का पूरा दोषारोपण हम पर करता है, जबकि परिस्थितियां किन्हीं भी परिस्थितियों में हमारे हाथ की नहीं होती है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से हमारी है, तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जाए?
ये आपकी जो प्रैक्टिकल परिस्थिति है, ये सही है, क्योंकि जब अनेक ग्रुप्स के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो कोई भी समस्या आ सकती है, और वो भी स्वाभाविक है। जब आपसे वो सुविधा लेते हैं, जहां कठिनाई आती है तो आपके सामने रखते हैं। ये भी हो सकता है हर एक का कोई एक ढंग आपके सामने वो बात रखने का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर उनके संस्कार भी होते हैं। एक बार ट्रेन की स्ट्राइक हुई थी ऑल इंडिया, हमने देखा जो पैसेंजर थे वो जाकर के स्टेशन मास्टर से झगड़ने लग गए। वो बेचारा बोलता किसी में क्या कर सकता हूं, और कई हमने ये भी देखा कि वो पैसेंजर बिल्कुल शांत खड़े थे, क्योंकि वो परिस्थिति को समझ रहे थे उसमें से फिर क्या मार्ग निकले, कैसे हम मंजिल पर पहुंचे, क्योंकि किसी का कोई आवश्यक काम भी हो सकता है। उसके लिए उनको थोड़ी परेशानी जरूर हुई, पर दूसरे मार्ग निकाले। तो इसी तरह से आप अपने मन को पहले तैयार रखिए, कोई भी कठिनाई आ सकती है। और कहने का ढंग हर एक का अपना अपना हो सकता है, कोई हमारी दिक्कतों को महसूस कर सकता है, कोई नहीं। इसलिए भी आपको इस परिस्थिति में ए बी सी और डी, ये चार का आपको थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। ए अर्थात अवॉइड कुछ बातों को बाईपास कर दो, जहां कुछ कर सकते हो, जैसे हार्ट का बाईपास कर देते हैं ना, ब्लड रुक रहा है, दूसरा मार्ग निकलना है, निकल सकते तो निकाल देते हैं, कुछ बाईपास कर दो। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कैंसिल करनी पड़ती हैं, वहां सॉरी कह करके भी अपने मन को हल्का करो। जब एबीसी तीन पक्के हो जावे, पहले एक साइड हो जावे, इसके बाद डिसाइड करो कि अभी मुझे क्या करना है। ये थोड़ा मेहनत का काम जरूर है, इसके लिए अपने को विल पावर इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए मन को रखे लाइट, कुछ बातें अवॉइड, कुछ बाईपास, कुछ कैंसिल करते हुए डिसीजन लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये पहले बुद्धि में रखो, ये प्रॉब्लम कुछ भी सामने आ सकती है, मुझे तैयार रहना है।
बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया दीदी जी ने, कुछ बातों को बाईपास करना पड़ता है, कुछ बातों को अवॉइड करना पड़ता है, और तभी आप इस प्रोफेशन में आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। हर तरह के लोगों से निपटना है तो कुछ न कुछ ऐसा मार्ग अपनाना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग बातों से समझ जाते हैं, कुछ लोग उसके बावजूद नहीं समझते। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, दीदी जी ने उसका एक मार्ग सुझाया आपको। देखते हैं सनत कुमार जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम सनत कुमार खेड़कर है, मैं संचालक नेशनल टूरिस्ट ब्यूरो नागपुर से हूं, मैं पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे पर्यटन ये व्यवसाय है, ये किसी भी देश और मानवता, इनके दोनों भी आध्यात्मिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना आवश्यक है।
उसके लिए पहले आप जहां वो आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए जाना चाहता है, वहां तक पहले उनको पहुंचाने का साधन तो आपके ही पास है। आज अगर हम विशेष क्लासेस लेने के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, मेडिटेशन के लिए माउंट आबू जाना चाहे, तो पहले तो आप ही उस मंजिल पर पहुंचाएंगे। इसलिए इसका महत्व समाज में भी है, हर एक के लिए है, और आध्यात्मिकता को प्राप्त करने वालों के लिए समय पर वहां पहुंचाने का आपका महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए अपने इस रोल को कम मत समझिए, और उसमें विशेष समझो, अगर किसी का एयर का कारोबार है, एडिशन में मैं ये कहूंगी कि मनुष्य को तो उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हो, मंजिल तक पहुंचाने देते हो। मुख्य कार्य आपका है जो मंजिल पर जो जाना चाहे वहां तक पहुंचाना, यह आपका कार्य है। और हम इसके साथ साथ हमारी जीवन की मंजिल क्या है उस और भी हमने क्या सोचा है, या इसी चक्कर में ही रहना है, या कुछ जीवन का लक्ष्य भी है, उस ओर भी आप ध्यान दें। जैसे मनुष्य को उड़ा तो देते हो पर अपने मन को उमंग और उल्लास के पंखों से भी उड़ाओ। अपनी बुद्धि को कहा जाता है ऊपर ईश्वर तक पहुंचाओ, ये हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। माने ये आप एक कार्य न करके दोनों कार्य करो, दोनों का महत्व है। आध्यात्मिकता और आपका कारोबार, दोनों का कनेक्शन भी जरूर है और दोनों की आवश्यकता भी जरूर है। जैसे अपने कार्य से ये प्रेरणा लो कि मैं भी अपनी मंजिल को सामने रखूं। आध्यात्मिकता में मंजिल बताती है, जीवन यात्रा है, तो जीवन यात्रा की भी मंजिल पर पहुंचने का साथ साथ प्रयास करो। तो दोनों का महत्व साथ साथ चलेगा।
इसमें कोई शक नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन का आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी मदद पहुंचती है। जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले हम आपका ही सहारा चाहते हैं, आपकी ही मदद लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपना प्रोफेशन करते करते कहीं ना कहीं सेवा भी करते हैं, और शायद यही एक तसल्ली ये चाहते भी थे इस सवाल के जरिए। अगला सवाल लेते हैं जिसे पूछना चाहती हैं प्रशंसा गर्गे।
मैं प्रशंसा गर्गे रेलवे में जॉब करती हूँ। मेरा सवाल है कि हम राजयोग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में।
राजयोग, जिसको कर्म योग भी कहा जाता है, क्योंकि राजयोग अर्थात परमात्मा के साथ बुद्धि की लगन, योग दो के बीच में होता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में, वो भी योग है। हम एक दूसरे को याद करते हैं, वो भी योग है। योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन, तो दो के बीच में होगा। तो यहां पर आत्मा का परमात्मा के साथ योग, मिलन, याद। इसके लिए हमारा पहले अपने मन पर कंट्रोल चाहिए। करना चाहते हैं परमात्मा को याद, बुद्धि जाती है बाहर। जैसे कहते हैं दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। आज के हमारी मनस्थिति वो बन चुकी है, थोड़ी देर के लिए अगर हम बैठते भी हैं, मूर्तियों के सामने बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, पर मन पता नहीं कहां कहां सैर करके आ जाता है। जहां होके आए हो वो भी याद आ जाएगा, यहां जहां जाना है वो भी याद आ जाएगा, या जो ऑफिस में काम करना है वो भी याद आ जाएगा, या कोई मित्र संबंधी भी याद आ जाएगा। बच जाता है मन। उसका कारण है कि पहले हम अपने आप को नहीं पहचानते। इसके लिए मैं बताऊंगी, जैसे आज यहां पर लाइट आई है, कैसे आई है, पावर हाउस और ये बल्ब, इसके बीच में जोड़ने का साधन है वायर, तार। तार को जब आप जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हो, ऐसे उठाई जैसे कोई धागे की गांठ बांधते, ऐसे बांधते क्या? सबसे पहले ऊपर की प्लास्टिक कवर उसको निकालते हैं, केवल एक साइड नहीं दोनों साइड का। उसके बाद आप उसको जोड़ते हो और फिर इधर रोशनी आ जाती है। तो इसी तरह से आत्मा ने यह देह रूपी कवर पहना हुआ है। तो जब हम देह की स्मृति में रहेंगे, मैं फलाना, मेरा ये व्यवसाय, मेरा ये कर्तव्य आदि आदि, तो कैसे पावर हाउस के साथ कनेक्शन जुटेगा? पावर हाउस है परमात्मा, कनेक्शन जुट नहीं सकता। परमात्मा को देह नहीं है, तो जब हम भी अपनी देह को भूलें, तब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ। और जो अगर हमें ये स्मृति आती है, उस स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। फिर उसकी वो स्थिति होती है, कर्म करते भी परमात्मा की याद में रह सकता है। हाथों से काम करो, मन उधर लगाओ। जैसे माता रोटी बेलती है, तो क्या पूरा समय रोटी बेल रही ये स्मृति करती है क्या? याद पति की होंगी, याद बच्चों की होगी। तो एक समय में दो काम किए जा सकते हैं ना, ऐसे हर एक बात के लिए। एक समय में व्यक्ति दो तीन काम करता है, चल रहे हैं पांव काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आंखें काम कर रही, बात कर रहे हैं मुख काम कर रहा है, दूसरा जो साथी वो बोल रहा है वो भी कान काम कर रहा है। पर इसके साथ साथ कई बार दिमाग हमारा दूसरी तरफ होता है, मन दूसरी तरफ होता है। तो एक समय में जब हम कई काम करने के अभ्यासी हैं, तो ये भी हम कर्म करते परमात्मा में मन लगा सकते हैं। पर केवल बताए से देह के कवर को भूलो।
सवाल तो कई हैं, हम चाहते थे कुछ और सवाल लिए जाएं, लेकिन समय की अपनी लिमिट है। घड़ी हमें कह रही है कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर चला है, तो अगले कार्यक्रम में हम लेंगे कुछ और सवाल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।